फेमस है और राम की सेना में शोक व्याप्त है। अब धीरे धीरे शोक कम होने लगा है, कम भी होने लगा है और बढ़ने भी लगा है। राम स्वशक्ति से चेतना में आ जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण गहन मूर्छा में है। लक्ष्मण को देखकर राम अति भावुक हो जाते हैं। मानव का लक्षण है भावुक हो जाना। मेरे राम, पशु भावुक नहीं होता है, और अगर पशु आपको भावुक होता हुआ दिखने लगे तो मान लीजिए कि वो मानव की सीमा में प्रवेश कर गया है। और मानव अगर भावुकता के क्षणों में भावुक ना हो तो मान लीजिए कि पशु हो गया है। ये पहचान है मानव। लक्ष्मण को मृत मान लिया है राम ने, और जैसे ही राम के अंदर यह क्लिक आया कि लक्ष्मण मृत हो गए हैं, थे तो वो मूर्छित, लेकिन राम को लगा कि मृत हो गए हैं। राम दीनता की स्थिति में आ गए। राम ने ये मान लिया कि अब युद्ध निरर्थक है। वो राम जो विश्व मानव है, आज इस क्षण लंका के युद्ध में शुद्र मानव में परिवर्तित हो गए हैं। शुद्रता क्या है कि जब मानव ऐसा आचरण करने लगे जो उसके स्टेटस मर्यादा से नीचे का। ये मानव की प्रकृति है कि वो एक रूपित नहीं रह सकता, वो मोनोलिथिक नहीं रह सकता मेरे राम। और विशेष करके वो उत्कृष्ट मानव, वो उत्कृष्ट मानव जो अपने नैनों के दर्पण में पूरी सृष्टि को देखता हो, एक क्षण में परिवर्तित हो जाता है क्षुद्र मानव में। राम को अब सीता और समष्टि की कोई चिंता नहीं है। राम कहते हैं कि अगर लक्ष्मण नहीं है तो कुछ नहीं है। छाया मत छूना मन, लक्ष्मण तो राम की छाया है। राम युद्ध को समाप्त मान लेते हैं और इतने आद्र हो जाते हैं, बिल्कुल आद्र हो जाते हैं। भरा हुआ गला है, अश्रु आंखों से बह रहे हैं। राम ने युद्ध को समाप्त मान लिया है और विदाई दे रहे हैं वानर सेना को कि हे वानर योद्धा, हे युद्धपति, जाओ तुम किष्किंधा लौट जाओ, अब ये युद्ध मेरे किस काम का। लक्ष्मण नहीं तो कुछ नहीं, लक्ष्मण नहीं तो कुछ नहीं। यहां सीता का अस्तित्व भी विलीन हो गया है राम के समक्ष, और राम राज्य की जो कल्पना लेकर के चले थे चित्रकूट से राम दंडकारण्य की ओर, और जल स्थान होते हुए किष्किंधा होते हुए पहुंचे हैं लंका, सब समाप्त हो गया है। और जब ऐसा देखा विभीषण, तो विभीषण घबरा जाते हैं। राम को देखकर विभीषण तो अत्यधिक घबरा जाते हैं, कारण विभीषण को अपना वर्तमान और भविष्य सागर की अतल गहराइयों में जाता दिख रहा है। विभीषण को अपना अस्तित्व सागर की गहराइयों में जाता दिख रहा है। डूबता हुआ जहाज पर कहे हैं विभीषण, कारण कि अगर राम वापस हो जाएंगे और राज्य विहीन राम से मिलेगा क्या विभीषण को, और लंकेश तो उन्हें छोड़ने वाला है नहीं, क्या होगा विभीषण सोच रहे हैं अपने बारे में। और अचानक सुग्रीव के अंदर नेतृत्व क्षमता का जागरण होता है। यह प्रत्युन्न मति का युद्ध हो गया है। सुग्रीव विभीषण की पूरी वानर सेना को धैर्य बंधाते हैं। सुग्रीव को अपनी खोई हुई भूमिका, अपना विलोपित अस्तित्व वापस लौटता दिखता है। सुग्रीव की कार्य शक्ति भाव प्रवणता से संचालित होती है। सुग्रीव एक ऐसे प्राणी है जो विवेक से संचालित नहीं, इट्स नॉट रेशनल, वो भाव से संचालित। और जब ऐसी स्थितियां आती हैं जीवन के संग्राम में, तो जो नेतृत्व करता होता है, लीडर होता है, उसके साथ जितने लोग होते हैं उनका प्रत्येक कर्म स्व पर केंद्रित होता है। हर व्यक्ति अपनी भूमिका तलाशता है और खोजता है कि वो क्या करेगा और कैसे अपने को प्रमाणित करेगा। मेरे राम सुग्रीव अपने श्वशुर सुषेण से कहते हैं कि लक्ष्मण अभी मूर्छित है और राम की स्थिति शोचनीय हो गई है। अब सुग्रीव को देखिए जरा, सुग्रीव क्या कह रहे हैं, सुषेण से कह रहे हैं कि आप इनको लेकर, किसको, राम और लक्ष्मण को लेकर किष्किंधा चलिए, इनकी चिकित्सा कीजिए, कराइए, और मैं रावण का वध करके सीता को लेकर शीघ्र ही किष्किंधा लौट आऊंगा। साहस देखिए सुग्रीव, सुग्रीव के साहस को ठेस लगी है कि जब राम स्वयं समरपति हो गए, सुग्रीव को लगा था कि युद्ध तो वो करेगा, राम के लिए करेगा। राम ने सुग्रीव के लिए बाली का वध किया है और सुग्रीव बदला पूरा करेगा, ऋण चुकाएगा और राम के लिए रावण का वध करेगा। सुग्रीव तो सुग्रीव है, उसमें रणनीति नहीं है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं है और इमोशनल इंटेलिजेंस भी नहीं, पहचान ही नहीं पा रहा है परिस्थितियों। और जब सुग्रीव ये कहते हैं सुषेण से कि आप राम लक्ष्मण को ले जाइए किष्किंधा, मैं रावण का वध करके सीता को लेकर के लौट रहा हूं, तो इस विषाद भरे महापरिवेश में भी सुग्रीव की बात सुनकर के सभी के चेहरे पर व्यंग और हंसी तैर जाती। ऐसा लगता है कि किसी गमगीन माहौल में अचानक एक मासूम तोतला बच्चा बोल उठा हो। कोई भी व्यक्ति सुग्रीव की बात पर कोई रिएक्शन नहीं करता, प्रतिक्रिया नहीं देता और सुषेण कहते हैं हनुमान से कि हे हनुमान तुम जाओ क्षीर सागर के तट पर। क्षीर सागर अरब सागर, अरबिक से पयो निधि, क्षीर माने दुग्ध, पय माने दुग्ध, क्षीर सागर, क्षीर सागर के तट पर जाओ और वहां तो पर्वत है द्रोणगिरी और चंद्रगिरी, इन पर्वतों से कुछ औषधियां लेकर के आओ, इनका प्रयोग करके मैं लक्ष्मण को होश में लाऊं। तभी अभी हनुमान जा नहीं पाए हैं और नेतृत्व संकट के घिरे हुए मेघों के बीच यहां क्राइसिस ऑफ लीडरशिप हो गया है, नेतृत्व संकट उत्पन्न हो गया है। गुरुत्मान वैनतेय गरुण का अवतरण होता है, गरुण दक्ष प्रजापति की बेटी और अरिष्टनेम की पत्नी विनीता के पुत्र है। पहले वो सर्पों के अनुचर थे, उनकी मां भी अनुचर थी सर्पों की, लेकिन अपनी ईमानदारी के पुरस्कार से, ईमानदारी का पुरस्कार क्या था कि उन्हें काम सौंपा गया था कि वो अमृत कलश लेकर के आए, वो ले आए थे लेकिन उसमें एक बूंद अमृत का ग्रहण नहीं किया था और इसी का पुरस्कार मिला था कि वो सर्पों के दासत्व से मुक्त हो गए थे और वरदान मिला था कि सर्पों का भोजन करने की शक्ति उन्हें प्राप्त हो जाएगी। ऐसे गर्व विनीता के पुत्र होने के कारण वैनतेय कहलाए, पक्षीराज आए अपने पंखों के स्पर्श मात्र से लक्ष्मण और अन्य मूर्छित वानरों को चैतन्य बना देते हैं। मानव है मेरे राम,
हर श्री राम भेद हो हनुमान, अति कृतज्ञ प्रभु परम
के लिए ही रित ने गरुण को उत्पन्न किया है। जो ये रित का चक्र है मेरा राम, वरुण जिसके देवता है रितस्य गोपा, ये रित क्या है? यूनिवर्सल साइकिल ऑफ द नेचर, सृष्टि का शाश्वत चक्र ही रित है। तो इस ऋतु में जो एंटागोनिस्ट है वो भी जान ले कि ऋतु ही तो वो शक्ति है जो सृष्टि को संचालित करती है। इसना का जो चक्र है उसमें जो हायरार्की है, पद सोपान क्रम है वो रितने उत्पन्न किए, रितने उत्पन्न किए। जो सर्पणी है एक बार में 1000 अंडे देती है, मेरे राम अगर सारे अंडे जीवित बच जाएं तो इस सृष्टि में तुम रहोगे, मैं रहूंगा या सर्प रहे। इसलिए सृष्टि की एक ऐसी माँ है सर्पणी नागिन, जो अपने ही अंडे खा जाती है, 2-4 बच जाते हैं वही सृष्टि के लिए मुसीबत बन जाते हैं। तभी तो किसी स्त्री को अगर अपशब्द कहा जाता है तो उसे नागिन कह दिया जाता है। ये रत का कमाल, ये रत का कमाल है। सेव पैदा होता है, हार्ड है, कोई कवर नहीं है उसके ऊपर, लेकिन संतरा पैदा होता है तो वो कवर में पैदा होता है, पैकिंग में पैदा होता है। ये रत का कमाल। तो सर्प को वश में करने के लिए रत ने गरुण को उत्पन्न किया। राम शिविर में उल्लास छा गया है और ये उल्लास का जो स्वर है कोलाहल है, ये लंका तक पहुंचने लगा है। अचेतन सीता की चेतना भी जागृत होती है। शर्मा राम लक्ष्मण के शुभ समाचार संप्रेषित करती है। मैंने तेरे गर्म के इलाज से लक्ष्मण के स्वस्थ होते ही अब युद्ध पुनः शुरू होने वाला है।
अब जो युद्ध शुरू हो रहा है मेरा राम, उसमें राम ने एक कर्म विशेष किया है।
इस संकल्प में विकल्प को खुला रखा, संकल्प में विकल्प को खुला रखा। मेरे राम तुमने सुना है कि संकल्प में विकल्प नहीं होते। हाँ, अगर संकल्प शुभ है समष्टि के लिए तो उसका विकल्पहीन होना ही शुभ है। लेकिन अगर संकल्प स्व कामना पर केंद्रित है तो उसमें विकल्प का होना भी आवश्यक है। देखिए कैसे घट रहा है। यहां रावण आया है युद्ध क्षेत्र में पहली बार। रावण के साथ बहुत से योद्धा, राक्षस योद्धा आए हैं युद्ध क्षेत्र में। रावण ने उन्हें वापस भेज दिया है लंका की सुरक्षा के लिए। रावण युद्ध नीति जानता है। रावण अकेला ही आया है युद्ध क्षेत्र में और पढ़ रहा है राम की। हनुमान नील सुग्रीव रोकते हैं रावण को युद्ध करते हुए, लेकिन रावण तो बढ़ रहा है और राम रावण के तेज से प्रभावित। देख रावण के किए गए अपराध के कारण दंड देने को भी प्रतिबद्ध है। राम सबसे पहले लक्ष्मण को रावण पर आक्रमण के लिए भेजते हैं। लक्ष्मण से युद्ध के प्रथम चक्र में रावण का धनुष टूट जाता है। लक्ष्मण के बाणों से रावण के शरीर से कई स्थानों पर रक्त की धाराएं फूट पड़ती हैं। रावण ये भी पता लगा चुका है कि नागपाश के समय लक्ष्मण के जीवन के लिए राम कितने व्याकुल थे। राम ने तय किया है कि सबसे पहले लक्ष्मण को ही समाप्त कर देगा, क्योंकि जब लक्ष्मण ही नहीं होगा तो राम युद्ध ही नहीं कर पाएंगे और पलायन करके भाग जाएंगे। रावण ब्राह्मी शक्ति का प्रयोग करता है लक्ष्मण के ऊपर। लक्ष्मण की छाती पर मार देता है रावण ब्राह्मी शक्ति। बहुत प्रयासों के बाद भी लक्ष्मण शक्ति से बच नहीं पाते और मूर्छित होकर गिर जाते हैं। रावण लक्ष्मण को उठाकर भागना चाहता है, सोचता है उठा ले जाएगा एक ट्रॉफी की तरीके से लक्ष्मण को लंका में। लेकिन हनुमान आते हैं पास में और मुष्टिका का प्रहार पास में है रावण के, और रावण लक्ष्मण को उठा नहीं पाता। रावण को हनुमान के प्रहार चक्कर भी आ जाता है लेकिन संतुलित हो जाता है, संतुलित हो जाता है रावण। लक्ष्मण की चेतना भी लौट आती है। अब रावण राम के सामने है, अब रावण ठीक राम के सामने है। रावण रथ पर सवार है और राम तो अरथी है, विरथी है। हनुमान संकेत करते हैं और राम हनुमान की बाहों पर बैठ करके युद्ध शुरू कर देते हैं। हनुमान ही रथ पर जाते हैं राम के। रावण राम पर आक्रमण करने के बजाय सबसे पहले हनुमान पर आक्रमण कर देता है। हनुमान से तो रावण की भाई पुरानी शत्रुता है। राम भी एथिक्स का प्रयोग करते हैं, रावण पर एकाएक आक्रमण नहीं करते। क्योंकि रावण ने सीधे राम पर आक्रमण भी नहीं किया है, इसलिए राम रावण के रथ सारथी बजा सब पर आक्रमण करते हैं, अलंकरण विहीन कर देते हैं रावण को। रावण ने चूंकि राम के वाहन हनुमान पर आक्रमण किया है, इसलिए राम उसी का प्रत्युत्तर देते हैं। राम अगर चाहते तो तत्काल ही रावण पर आक्रमण कर देते, लेकिन राम अभी भी रावण को क्षमा मांगने और समर्पण का विकल्प दे रहे हैं। संकल्प में विकल्प खुला हुआ है। मुकुट और शस्त्र अस्त्र विहीन रावण राम के सामने है, राम के सामने है मेरे राम, राम के सामने है मेरे राम। कौन? रावण, जिस पर न शस्त्र है न अस्त्र है न मुकुट है न रथ है न सारथी है, अकेला खड़ा है उनके सामने रावण। कौन नहीं मारेगा ऐसे शत्रु को अपने सामने पाकर, लेकिन राम, राम को तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, केवल कर्मोत्तम नहीं बनना है, केवल लक्ष्य प्राप्त नहीं करना है, लक्ष्य के साथ में मर्यादा जिसे आज हम एथिक्स कहते हैं, एथिक्स को स्थापित करना है। इसलिए राम छोड़ देते हैं रावण, कहते हैं रावण से राम कि तुम इस समय अस्त्र शस्त्र विहीन हो, तुम्हें मैं नहीं मारूंगा, आक्रमण नहीं करूंगा तुम्हारे ऊपर, जाओ विश्राम करो और अगले दिन का युद्ध का निमंत्रण भी साथ में देते हैं। रावण को युद्ध का निमंत्रण भी देते हैं, विश्राम के लिए सुझाव भी देते हैं, युद्ध भी नहीं करते, आक्रमण भी नहीं करते। ऐसे है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम।